का सीजन करीबन पूरा होने जा रहे हैं, उसमें अभी चलेगी बाबा की लास्ट मुरली। तो कई भाई बहने प्रश्न पूछते हैं कि हमें इस समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, समय के साथ साथ हम क्या करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो सीजन की बाबा की मुरलियां चलती हैं और जो बाबा ने सीजन में हमें कहा हुआ है उसको ही हमें करना है, और इसी में ही हमारी सफलता है। क्योंकि सीजन की मुरलियों का बहुत बड़ा महत्व है, परमधाम से बाबा ऊपर से देखता है कि बच्चों को वर्तमान समय क्या समस्याएं हैं, उनका योग क्यों नहीं लग रहा है, उनको माया किस रूप से आ रहे, या फिर समय के साथ उनको क्या करना चाहिए। उन सब बातों को देखते हुए बाबा क्या करता है, सीजन में आकर के उन सब प्रश्नों के जवाब के रूप में मुरलियां चलाता है। तो इसीलिए हमें कोई नया प्लान नहीं बनाना है, लेकिन जो कहा है उसको ही करना है। इसको कहा जाता है समय अनुसार पुरुषार्थ। और जो समय अनुसार जो बाबा की मुरलियां चलती है उस अनुसार जो प्रैक्टिकल में करता है उसके जीवन में कोई समस्या भी नहीं आएगी और वो समय के साथ चलेगा। इसीलिए हमें सीजन की मुरलियों का बहुत डीप में स्टडी करनी है। तो सीजन में टोटल बाबा की 10 वाणियां चलेगी, अब तक 9 चल चुकी। तो उस वाणियों को हम याद कैसे रखें, पूरी मुरलियां हमें पूरा साल तक याद रहे, उसके लिए क्या तरीका है। और सीजन की ही मुरली की स्टडी क्यों करना है, जैसे टीचर होता है, टीचर पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद छुट्टी में जाता है, और छुट्टी में जाने के बाद जब वापिस आएगा तो क्या चेक करता है, होमवर्क चेक करता है। टीचर ने कहा है नए लेसन के नीचे जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको लिख करके लाना, और हमने आठवें का लेके गए तो टीचर खुश नहीं होगा। इसी तरह यह भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बाबा ने 6 मास तक हमें क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद बाबा अभी 6 मास छुट्टी में जाएंगे, और उसके बाद अगले समय जब हम बाबा से मिलने के लिए आएंगे उस समय बाबा क्या चेक करेगा, जो बाबा ने होमवर्क दिया उसको किया, बाबा ने कहा ये करो और हमने कोई नया ही करके आएंगे तो बाबा खुश उसे नहीं होंगे। इसीलिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है, इस प्रश्न का जवाब है पुरुषार्थ वही करना है जो सीजन में बाबा ने हमें कहा हुआ है। तो इस सीजन में बाबा की करीबन जैसे अभी तक 9 मुरली चली, तो उनको याद रखने का तरीका है हर सीजन की जो मुरलियां चलते हैं उसके टॉपिक्स होते हैं। कोई भी मुरली जब चलते हैं उसका एक टॉपिक लेकर के बाबा उस मुरली को चलाते हैं। जैसे पहली मुरली चली थी सोमान में रहो और क्या करो, सबको सम्मान दो, और उसके साथ एक छोटी सी और एक धारणा थी अगर एक को प्रत्यक्षता करना है, प्रत्यक्ष करना है तो अवस्था एक रस बनाओ। ये टोटल उस पहले मुरली का सार था और हमें उसको करना है। दूसरी मुरली का सार था सो उपकारी बनकर के अपकारी पर उपकार करो और क्या करो, सर्वशक्ति से संपन्न बन, सर्व गुणों से संपन्न बन, सोमानधारी बन करके सोमानों के दाता बनो, सम्मान के दाता बनो। यह उस मुरली का टोटल सार था। अपकारी पर उपकार करो, साथ में सर्वगुण सर्वशक्ति से संपन्न बन, सम्मान के दाता बनो, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जो स्वयं सर्वशक्ति से सर्व गुणों से संपन्न है। जो स्वयं ही भूखा है वो औरों को सम्मान कैसे देगा? इसीलिए बाबा ने कहा क्या करो, सर्व को सम्मान दो। ये दूसरी मुरली थी। तीसरी मुरली अपने चाल और चलन के द्वारा, वैसे ही ये जो मुरली का बाबा ने होमवर्क दिया था, टोटल 6 मास के लिए बाबा ने कहा था, अपने चलन और चेहरे के द्वारा अव्यक्त स्वरूप दिखाओ, साक्षात्कार मूरत बनो। यह तीसरे मुरली का होमवर्क था या उसका सार टोटल था। चौथी मुरली चली थी, बाप दादा की आशा है। क्या आशा है? मेरा हर बच्चा क्या करे, दुआएं दे और दुआएं ले। तो ये हमें करना है। ये उस मुरली का टोटल सार और ये हमारे लिए होमवर्क भी था। उसके बाद पांचवी मुरली चली थी। जो पांचवी मुरली थी 31 दिसंबर नए साल की थी। शायद उसे पहले कुछ सुनामी लहरें आई थी और उसी लक्ष्य से बाबा ने वो मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि इस वर्ष में, वर्ष के प्रारंभ से क्या करो, वैराग वृत्ति को धारण करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलो, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति यही मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलने की चाबी है। तो इस वर्ष में हमें प्रारंभ से बाबा ने कहा था, तो अभी 3रा मास चल रहा है, हमें इस वर्ष में वैराग वृत्ति को धारण करना है। ये उस मुरली का होमवर्क था। उसमें और भी कई छोटी छोटी बातें थी, हाय और भाई को समाप्त करो, निमित्त मनोनिर्माण बनो, लेकिन टोटल सार था बेहद के वैरागी बनो। उसके बाद बाबा की चली थी 18 जनवरी की मुरली और उस मुरली का बाबा ने खास अटेंशन खिंचवाया था। सेकंड में देह बांध से न्यारे बनो, मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति करो, जीवन मुक्ति का मास्टर दाता बनो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मास्टर दाता बनो। ये 18 जनवरी की बाबा की मुरली और उसमें और भी कई बाबा की शिक्षाएं थी छोटी छोटी। एक तो बाबा ने मैपन को उसमें स्पष्ट किया था कि मैपन क्या है। मैपन है देह भान में आना, ये भी मैपन है। तो उसमें बाबा ने और भी कई बातें स्पष्ट की थी। तो कहने का मतलब उस मुरली का सार था मैपन से मुक्त, देह भान से मुक्त। उसके बाद जो बाबा की चली थी 3 फरवरी की वाणी और उस 3 फरवरी के वाणी में बाबा ने विशेष कहा था, सेवा में रहते हुए भी क्या करो, उपराम बनो, वैराग वृत्ति धारण करो, सेवा में रहते हुए भी वैराग, कर्तापन के भान से भी परे। उस मुरली का वो सार। और एवरेडी बनो, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो, और भी छोटी छोटी बातें उस मुरली में थी। उसके बाद बाबा की चली 20 तारीख की, 20 फरवरी की वाणी, अपने दिल से क्या करो, बाबा कहो, दिल से बाबा कहेंगे तो सर्व खजाने के मालिक बनेंगे, बेफिक्र रहेंगे। उस टोटल मुरली का सार, दिल से बाबा कहना है और सर्व गुणों और खजानों के मालिक बनना है और साथ में बेहद के वैरागी वृत्ति बनना है। और उसमें एक बहुत अच्छा बाबा ने बेहद के वैरागी बनने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बताया था, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। और लास्ट में नवी माली शायद शिवरात्रि की थी, उस शिवरात्रि के वाणी में बाबा ने व्रत बताया था, कौन सा, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लो और मैपन की बलि चढ़ाओ, तब शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, तब कहेंगे सच्ची शिवरात्रि। जैसे भक्ति में बाबा ने उसको कहा था, भक्ति में व्रत करते हैं और क्या करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी बलि, बाबा ने कहा कि सच्ची बलि मुझे चाहिए, मैपन की बलि। और व्रत कौन सा, संपूर्ण पवित्रता, केवल पवित्रता नहीं, तो ये टोटल बाबा की नववाणी। और उसके बाद अभी भी चली गई एक, वो भी शायद हो सकता है पवित्रता के ऊपर ही चली, क्योंकि होली का त्योहार है। तो इस पूरा सीजन आपके सामने आ गया, तो बाबा हमारे से क्या चाहते हैं, और हमें कोई नया चार्ट नहीं बनाना है, लेकिन यही चार्ट चेक करना है। आज सारा दिन हमने सम्मान में रह करके सम्मान सबको दिया, परोपकारी बन करके सभी को अपकारी पर भी उपकार किया, कोई किसने मेरे ऊपर अपकार किया तो भी मैंने उसके ऊपर उपकार किया, चाल और चलन के द्वारा मैंने बाप की प्रत्यक्षता की, आज मैंने सबको दुआएं दी, सबकी दुआएं ली, आज मैंने बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की थी। 10 मुरली के 10 पॉइंट लिख करके उसका ही चार्ट चेक करना है, और उसी मुरली को एक मास में आप 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये सीजन की मुरली हर एक के पास रखनी है, 1 तारीख से 10 तारीख तक, 1 तारीख को पहली वाणी, 2 तारीख को दूसरी वाणी, 3 तारीख को तीसरी वाणी, 10 के बाद 11 तारीख को फिर पहली वाणी, आप मास में 3 बार उस वाणियों को रिपीट कर सकते हैं। क्यों हमें इस वाणी को रिपीट करना है, क्योंकि वर्तमान समय हमारे सामने जो बाबा ने कहा है उसी अनुसार समस्या है, माया भी उसी अनुसार आ रहे हैं। तो ये सब बाबा ने हमें सब कुछ बताने के बाद भी हम क्या करते हैं, कहते हैं मेरा योग लगता नहीं, मेरे के सामने माया आती है। जब हम स्टडी नहीं करेंगे तो माया आएगी ही, तो इसीलिए हमें इस सीजन की मुरलियों को हमें क्या करना है, स्मृति में रखना है। नहीं तो जैसे शास्त्र में बताते ना, भारतवासियों के पास गीता का शास्त्र है, एक चित्र है सीढ़ी में, उन्होंने अपने तकिया के नीचे वो शास्त्र को लिया है, शास्त्र होते हुए भी शास्त्र सिर के नीचे है, लेकिन कटोरा लेकर के क्या कर रहे, मांग रहे सुख दो शांति दो। वास्तव में वो चित्र ब्राह्मणों के लिए भी लागू पड़ता है, इतना बाबा ने हमें ज्ञान दिया मुरलियों के द्वारा, तो भी हम क्या करते हैं, कहते योग लगता नहीं, मेरे सामने यह समस्या आती है। अगर जो मुरलियों की स्टडी डीप में करता है उसके जीवन में कोई समस्या कोई बातें नहीं आ सकती, इसलिए मुरलियों की डीप स्टडी करो। तो यह है पुरुषार्थ करने का तरीका, अभी इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे वो थोड़ा देखेंगे। चलो 2 मिनट,
का ध्यान कीजिए।
जैसे बात चल रही थी कि समय के साथ हम क्या पुरुषार्थ करें, या इस साल में पूरा साल हम क्या करें, तो इस साल हमें वही करना है जो बाबा ने कहा हुआ है, तब फिर हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत अच्छी चलेगी, हमारा योग भी लगेगा। क्योंकि बाबा जो सीजन की मुरलियां चलाते हैं, योग क्यों नहीं लगता, उन्नति क्यों नहीं होती, हमारे पुरुषार्थ जीवन में माया किस रूप से रोड़ा बनकर के सामने आ रहे, उसके जवाब। तो पहली मुरली को हम प्रैक्टिकल में फिर कैसे करें, जैसे पहली मुरली का सार बताया था, सोमान में रहो और सर्व क्या करो, सर्व को सम्मान दो। सम्मान कौन दे सकता है? अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो जरूर हमारे से दूसरे के प्रति अशुभ भावना निकल रहे, व्यर्थ विचार चल रहे। बाबा ने कहा कि योग क्यों नहीं लगता, दिमाग भारी क्यों रहता है, क्योंकि दूसरे की अशुभ भावना, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अशुभ सोच रहा है या आप किसी के प्रति अशुभ सोच रहे हैं, तो आपका योग नहीं लगेगा। वेस्ट का पलड़ा भारी होगा और शुभ वाला, शुभ संकल्प या शुभ भावना, उसका पलड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि शुभ भावना पुरुषार्थ की या योग की लिफ्ट है, इसीलिए शुभ भावना रख करके सबको क्या करना है, सम्मान देना है। तो सम्मान देने के लिए हमें बीती हुई बातों को, हरेक के प्रति जो हमने क्या किया है, हरेक के प्रति कुछ सोच के रखा है, ये है ही ऐसे, ये ऐसे है, लेकिन नहीं, अगर मुझे सम्मान देना है सबको, तो उसके बीती हुई बातों को भूलना जरूरी है। जैसे नदी में पानी जाता है और जब आप नहाने के लिए जाएंगे, नहा करके फिर दोबारा आएंगे और दोबारा नहाने के लिए जाएंगे, जो पहला जो पानी था वो चला गया, अब जब दोबारा जाएंगे तो वो दूसरा पानी है। तो इसी तरह हर व्यक्ति की भावनाएं हैं, हर व्यक्ति के विचार बहते रहते, लेकिन हमने क्या क्या किसी को लेबल लगाया, या है ही ऐसे, और उसके कारण हम उसको सम्मान नहीं दे पाते। जब बाबा तो उन आत्मा के प्रति कितना सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये है ही ऐसे। जो दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकता, वो स्वयं भी सोमान में नहीं रह सकेगा, उसको बाबा की याद भी नहीं आ सके। इसीलिए हमें आज जो योग नहीं लगता, उसका मूल कारण है सम्मान की भावना की कमी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस साल में कोशिश करके हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, खुद भी सम्मान में रहना है और दूसरों को भी सम्मान देना है और सम्मान के भावना से देखना है। इसलिए उस मुरली में और एक बहुत अच्छी लाइन बाबा की थी, इस वर्ष में हर कर्म में हर बोल में सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। तो इसीलिए हमें बीती हुई बातों को भूलना है, स्वयं को झुकाना है और सबको क्या करना है, सम्मान देना है। जब आप किसी को सम्मान देंगे तो उनको लगेगा कि इनके मन में मेरे प्रति कुछ भी नहीं है, तब पर उसके विचार आपके प्रति नेगेटिव नहीं चलेंगे, जिससे फिर आपका योग भी बाबा से सहज लग सकता है। तो इसलिए हमें सम्मान देना है, सम्मान में रहना है। दूसरी मुरली जो थी, वैसे पहले मुरली का और एक जैसे धारणा थी, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करो, एक रस अवस्था बनाओ। जितना हम एक रस होंगे, एक मत होंगे, एकाग्र होंगे, उतना एक प्रत्यक्ष होगा, अर्थात बाप प्रत्यक्ष होगा। अगर हमारी एकाग्रता नहीं, अवस्था एकरस नहीं, आपस में एकता नहीं, तो एक बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अवस्था को एकरस बनानी। तो ये है पहले मुरली का होमवर्क, इसको हमें करना है। दूसरी मुरली सेम, पहली और दूसरी एक जैसी बाबा की थी, लेकिन उसमें बाबा ने खास कहा था कि सो पर उपकार करो। सो पर उपकार करने के लिए क्या करो, अपकारी पर भी उपकार करो। कोई आपके ऊपर अपकार कर रहा है, लेकिन आप क्या करो, उपकार करो। अगर वो सोचेंगे क्यों करता है ये, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, कोई बात नहीं। अगर कोई अपकार करता है तो भी क्या करो, उपकार करो। जैसे देखो शिव बाबा ने, शिव बाबा के ऊपर हमने क्या किया, कितना अपकार किया, लेकिन बाबा ने क्या किया, बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया। इसीलिए बाबा का गायन है, अपकारी पर भी क्या करता है, उपकार करता है। बाबा की कितनी हमने ग्लानी की है, भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, ठिकर में, फितर में, तो भी बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऊपर से सोचा मेरे को ये बच्चों ने इतना गाली दी, मैं नीचे जाकर के उनका गला दबाऊंगा, सोचा या सोचा कि मैं अभी इनको कभी भी देवी देवता नहीं बनाऊंगा। बाबा के पास इतनी बड़ी पावर है, वो चाहे तो ऊपर से उसको जिंदा जला सकता है, लेकिन बाबा ने उन सब बातों को क्या किया, सहन किया। और जब वो ऊपर से नीचे आया, 2500 वर्ष तक वो सुनता रहा उन गालियों को, और जब वो नीचे आया, जिन्होंने गाली दी उसको पहले गले लगा दिया। इसीलिए बाबा कहते कि बाबा केवल ये ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा कहते कि बच्चे सी फादर। गीता में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन मैं भी तुम्हें यहां आकर के कर्म करके सिखला रहा हूं, मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं। वास्तव में यह बाबा का महावाक्य है, बाबा संगम युग में केवल हमें उपदेश नहीं देते कि अपकारों पर उपकार करो, लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल में किया है। जिन्होंने गाली दी उनको गले लगाया। इसीलिए हमें भी क्या करना है, आज हम क्या करते, जो गाली देता है, हमारा अपमान करता है, 15-20 दिन उसके साथ बात नहीं करेंगे, इधर मुंह करके चले जाते, लेकिन बाबा ने क्या किया, अपकारी पर भी उपकार किया। केवल उसके लिए एक फार्मूला है, अपकारी पर भी उपकार करने के लिए निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। अगर कोई गाली देता है, आप यह समझो कि ये गाली नहीं दे रहे, लेकिन मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे। और जो यह संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में आपके ऊपर रोज गुलाब के फूल चढ़ाने के लिए आएगा, आपके मूर्ति के ऊपर, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है, उस बात को, उस आपकार को उपकार में परिवर्तन करो। जब योग लगाने के लिए बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपकी ग्लानी करता है, आपकी बुराई इधर उधर फैलाता है, मतलब आपके अंदर जो कमजोरी नहीं है तो भी आपकी इधर उधर फैला करके आपके प्रति भावनाएं खराब करते हैं, उसको भी आप पॉजिटिव में ले लो, कोई बात नहीं। यहां जो आपकी ग्लानी करेगा, आपकी बुराई इधर उधर फैलाएगा, वही व्यक्ति द्वापर युग में आपके मंदिर के सामने आकर के आपका गुणगान करेगा, हे देवी तुम बहुत महान हो, हे देवी तुम बहुत अच्छी हो, आप क्या गीत गाने वाला बनेगा, इसीलिए हमें क्या करना है, उसको भी दुआएं देना है। निगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज। कई सोचते ना मुझे मेरे पीछे ये पड़ा है, मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, आप उसको पॉजिटिव में ले लो, ये सोचो कि ये मुझे संपूर्ण बना करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जितना वो परेशान करेंगे आपको कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। तो अच्छा है ना वो बाबा की याद दिला रहे हैं। जैसे कोई माता को अपना पति तंग कर रहा है तो ये समझो कि मैंने भी इसका पति बनकर के कभी तंग किया होगा, इसीलिए तंग कर रहा है, मेरा हिसाब किताब सुख तो हो रहा है। तो इसीलिए हमें हर निगेटिव को पॉजिटिव में जब लेंगे तब हम सम्मान में रह सकेंगे और उसको सम्मान दे सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि क्या करो, आपकार पर उपकार करो, उसके नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करो। आज योग क्यों नहीं लग रहा है, कोई मेरे पर अपकार करता है तो हम उसको ऐसे ही लेते, क्यों बोल रहे, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। योग में जब बैठते तो वही बातें याद आते, इसीलिए हमें क्या करना है, हर निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, ताकि सम्मान में भी रह सकेंगे और जिसने अपकार किया उसको सम्मान भी दे सकेंगे, और फिर वो सामने वाला परिवर्तन होगा, वो कहेगा अरे इसको हमने कितना परेशान किया, कितना तंग कर रहे, लेकिन ये देखो मेरे ऊपर उपकार कर रहे, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन होगा। बाबा ने इस मुरली में कहा था, कई बच्चे चाहते कि यह परिवर्तन नहीं होता, इसको हम सुधारना चाहते, बाबा ने कहा कि क्यों नहीं परिवर्तन होता, क्योंकि उसके प्रति शुभ भावना नहीं है। इसीलिए हमें हर नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करना है, तब हम सम्मान में रह सकेंगे, योगयुक्त रह सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। तो इस दूसरी वाणी को हम ऐसे, उसका तो डीप बहुत है लेकिन कहने का मतलब, दूसरी बात मुरली को हमें इस सार को प्रैक्टिकल में इस साल में लाना है, और काफी सारी ऐसी बातें आएंगी इस साल में, लेकिन हमें इस बाबा की बातों को याद रखना है। तीसरी बाबा की मुरली थी कौन सी, अपने चलन और चेहरे के द्वारा क्या करो, अव्यक्त स्वरूप दिखाओ, बाप समान अव्यक्त स्वरूप दिखाई पड़े। वो कब दिखाई पड़ेगा, जब हमारी आत्मा की ज्योति सदा ही जलती रहे। अगर हमारे अंदर आत्मा की ज्योति बुझी है तो हमारे चलन और चेहरे के द्वारा अव्यक्त स्वरूप कैसा नजर आएगा। जब हमारी आत्मा की ज्योति जलती है, हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, तब हमारा वो अव्यक्त स्वरूप नजर आएगा, फरिश्ता स्वरूप नजर आएगा, तब हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे, बाप की प्रत्यक्षता भी कर सकेंगे। क्योंकि जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तब बाबा भी हमारे साथ में रहता है, जब हम खुद को भूल जाते हैं बाबा भी भूल जाता है। तो हमारी आत्मा की ज्योति बुझती क्यों है, कर्म करते समय क्यों बुझी रहती है। कई भाई बहने पूछते हैं, हम जब योग लगाते उस समय तो ठीक रहता है, लेकिन सारा दिन कर्मों में हमारी आत्मिक स्थिति रहती नहीं, क्यों नहीं रहती, बुझी भी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जब योग लगा रहे थे उस समय उनका योग ठीक नहीं हुआ। जैसे कोई बैटरी जब चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद सारा दिन उसे काम लिया जाता है, जैसे आजकल टेलीफोन निकला है मोबाइल, अगर उसको चार्ज करेंगे ठीक विधि से तो सारा दिन आप फोन को रिसीव कर सकेंगे, फोन को कर सकेंगे। अगर आपने चार्ज ठीक नहीं किया तो बैटरी से यूज सारा दिन नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, अगर मेरी बैटरी आत्मा की सारा दिन चलती रहे या आत्मा की ज्योति जलती रहे, इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी योग का अभ्यास करते हैं वो विधि से करना है। विधि से अर्थात जैसे स्थूल में भी देखो बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, बैटरी को ला करके प्लग के पास दो घंटा तीन घंटा रखो तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बैटरी को प्लग के पास रखने के बाद उसके तारे प्लग में डालनी होते हैं तब उस बिजली का करंट आएगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसी तरह मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो केवल हम बाबा के कमरे में आकर के बैठ गए, क्लासरूम में आकर के बैठ गए, लेकिन मन और बुद्धि निगेटिव और पॉजिटिव की तार प्लग में डाली नहीं, परमधाम में उस सर्वशक्तिवान के ऊपर लगाई नहीं, तो चार्ज कैसे होंगे? अगर किसी की यह कंप्लेन है कि मेरी सारा दिन आत्मिक स्थिति होती ही नहीं, इसका कारण है जब भी योग लगाते थे उस समय मन बुद्धि की तार प्लग में नहीं डाली थी। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी योग लगाने के लिए बैठेंगे मन बुद्धि की तार प्लग में अर्थात परमधाम में लगाने। अच्छा चलो लगा दी, मन बुद्धि लगाई परमधाम में, लेकिन केवल एक तार डालेंगे, प्लग में एक तार डालो दूसरी नहीं डालो, चार्ज हो जाएगी बैटरी? नहीं हो जाएगी, दोनों भी तारे डालनी होती है। इसी तरह में जब योग में बैठते तो मन और बुद्धि दोनों भी तारे बाबा के साथ ज्वाइंट करनी है। अच्छा तारे तो डाल दी लेकिन उसका स्विच ऑन नहीं किया तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। मन बुद्धि लगाई लेकिन चुपचाप होकर के बैठ गए, स्मृति का स्विच ऑन नहीं किया तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसीलिए हमें जब योग में बैठते हैं तो क्या करना है, स्मृति का स्विच को ऑन करके बैठना है। वो मिठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, क्या हम थे, तो जब तक ये स्मृति की लगन की अगन नहीं होंगी, क्योंकि लगन की अगन में हमारी बैटरी चार्ज होती है। और जब योग करते समय आपकी लगन की अगन है तब सारा दिन आपकी ज्योति जलती रहेगी और आपके द्वारा अव्यक्त स्वरूप नजर आएगा, आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। अभी भी बाबा ने शिवरात्रि की मुरली में भी क्या कहा, मैं आत्मा दूसरी आत्मा को देख रहा हूं, ये व्रत लो। आंखें है उसके पास ही ब्रुकुटी है, लेकिन आत्मा उसको दूसरे की तब दिखाई पड़ेगी जब खुद आत्मा की ज्योति, खुद की आत्मा की ज्योति जागृत है। इसलिए सारा दिन हमारी ज्योति जलती रहे इसलिए स्मृति का स्विच ऑन करना है। अच्छा समझो स्मृति का स्विच ऑन किया लेकिन आधा घंटा तक तारों को डालते रहेंगे और निकालते रहेंगे प्लग में तो भी बैटरी चार्ज नहीं होंगी, तो कैसे डालते हैं और निकालते हैं? समझे योग लगाने के लिए बैठेंगे बाबा के कमरे में, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर अचानक याद आएगा, अच्छा हो गया याद आया, मुझे किसी ने क्लास का कैसेट लाने के लिए बोला था वो एक, अच्छा हो गया याद आया, अभी जाकर के योग करके फिर लेके जाएंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर सोचेंगे वहां लाने के लिए जाएंगे कैसेट तो नजदीकी लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा कुछ स्टिकर लेने हैं, पेन भी लेने हैं, एक माताजी ने मंगाया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर सोचेंगे स्टिकर लेने के लिए जाएंगे तो फिर अच्छा हो गया याद आया मेरे को बाहर से कुछ खरीदारी भी करनी है, नहीं तो फिर बाद में भीड़ हो जाएगी, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर सोचेंगे मेरे साथ जो माताजी आए उठ के गई तो नहीं होगी, पीछे मुड़ करके देख रहे, माना तारे प्लग में डाल रहे निकाल रहे डाल रहे निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा, बैटरी चार्ज होगी? तो इसीलिए आप कितना घंटा बाबा के कमरे में बैठे वो मत होगा नहीं, लेकिन आपकी तारे प्लग में बाबा के ऊपर कितना समय थी वो मत होगा। और जब हम ऐसा योग करते हैं तो सारा दिन हमारी आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी और जिससे हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे, बाबा की याद भी कर्मों में रहेगी और चाल और चलन के द्वारा अव्यक्त स्वरूप नजर आएगा, क्योंकि जिसकी आत्मिक स्थिति है उसका चलन और चेहरा कुछ अलग ही नजर आएगा। इसीलिए यह है तीसरी मुरली को हम प्रैक्टिकल में लाने के लिए अभ्यास। उसके बाद चौथी मुरली थी क्या करो, दुआएं दो और दुआएं लो। वैसे ही इस बात को बाबा ने इस साल के तीन चार वाणी में बार बार रिपीट किया हुआ है। शायद अभी लास्ट की मुरली में भी बाबा ने कहा पुरुषार्थ का सहज तरीका है दुआएं दो और दुआएं लो। ये बाबा की आशा है। जो किसी को दुआएं नहीं दे सकता वो देवता कैसे बनेगा? अगर द्वापर में आपकी मूर्ति बन जाए, आपको मंदिर में रखा जाए, लेकिन मूर्ति उसी की ही मंदिर में रहते जो दुआएं देते हैं। कोई भी भगत कैसा भी गलती करके आता है तो भी मूर्ति उसको ये नहीं कहेगी कि उसका हाथ नीचे नहीं जाएगा या चेहरा पीछे नहीं करेगी, लेकिन उसका दुआओं का ही हाथ होता है। इसी तरह हमें भी सबको दुआएं देनी है, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे मेरे ऊपर अपकार करता हो, मेरी ग्लानी करता हो, कोई गलती करता हो, तो भी दुआएं देनी है। अगर बददुआएं देंगे तो स्वयं का ही घाटा है। अगर किसी को बददुआएं दी तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए, और ये शब्द जाएंगे उसका भी बुरा करेंगे, वापिस घूम करके हमारा भी बुरा हो जाएगा। ये नियम है। अगर दुआएं देंगे तो ये दुआएं जाएगी उसका भला करेगी, वापिस घूम करके आपका भी भला करेगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे उतावले नहीं बनो। किसी ने गलत कुछ किया तो आप उतावले नहीं बनो, लेकिन उसको दुआएं दो, धैर्यता की शक्ति अपनाओ। इसीलिए हमें क्या करना है, इस वर्ष में अनेक जन्मों के कुछ हिसाब किताब के रूप में आत्माएं आएंगी, कुछ गलत बोलेंगी, कुछ गलत कर्म करेगी, कुछ सताएंगी भी, तो भी हमें उसको दुआ ही देनी है, तब वो देवता बन सकेंगे। तो दुआएं देनिया और दुआएं लेना। कई सोचते कि हम पता नहीं, हम जब ज्ञान में आए थे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों योग नहीं लग रहा है। जरूर किसी ने किसी के निगेटिव संकल्प आपके प्रति चल रहे, तो ना मुझे कोई याद करे ना हमें किसी की याद आए। हमें याद क्यों करता है कोई? अगर कुछ गलती करते हैं तो भी याद करता है, कुछ लगा होगा तो भी याद करता है। अगर मुझे कोई याद कराए तो मुझे बाबा की याद कैसे आएगी? इसलिए हमें क्या करना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ऐसा सारा दिन कर्म करना है जिसे हमें दुआएं ही मिलती रहे, ऐसे बोल बोलना है, ऐसे कर्म करना है जिसे दुआएं मिले। और दुआएं अगर होंगी, जब शाम को योग में बैठेंगे ये दुआएं रॉकेट का काम करेंगी, सहज पुरुषार्थी बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए। और कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं लो। इसलिए हमें दुआएं देनी और लेनी है। अगर कोई बहू को मार करके, पिटाई करके, झगड़ा करके आए और योग लगाने के लिए बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, ऊपर उठने के लिए शुरू करेंगे, लेकिन वो बहू के वैरत संकल्प आपके प्रति चल रहे, तो वो ऊपर से आपको नीचे खींचेंगे, आप ऊपर उड़ रहे और वो नीचे खींचेंगे, योग कैसा लगेगा? तो इसलिए किसी का भी दिल तोड़ना नहीं, किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिसे हमें दुआएं मिलती रहे और हमारा सहज योग लग रहे। तो यह है चौथी मुरली। इसका तो डीप में बहुत है, तो कहने का मतलब हमें इस वर्ष में क्या करना है, ये दुआएं देना और लेना, इसके ऊपर ध्यान रखना है। और पांचवी, बेहद के वैरागी बनो। केवल स्मशानी वैराग नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है, बेहद के वैरागी बनना है। बेहद का वैराग तब आएगा जितना हम विधेय अवस्था में रहेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, उतना वैराग ऑटोमेटिकली आएगा। देह का भान आना यह भी एक प्रकार का क्या है, मैपन, यह भी वैरागी नहीं है। देह भान या किसी से लगाव होना यह भी वैराग नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ का फाउंडेशन या तपस्या का फाउंडेशन है वैराग। जितना वैराग का हमारा फाउंडेशन पक्का होगा उतना हमारी तपस्या भी गहरी होगी। इसीलिए हमारे अपने स्वभाव संस्कारण से वैराग। उसमें बाबा ने कहा था कि कई बच्चे सेवा करते हैं लेकिन उसमें भी मैंपन आता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। बाबा ने कहा कि नहीं, करण करावन हर बाबा मेरे से करवा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं कठपुतली हूं, परमधाम में बाबा बैठा है। जैसे आप सबने देखा होगा कठपुतली का एक डांस होता है, वो छत के ऊपर बैठ करके वो चलाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता हूं, लेकिन कठपुतली क्या करते है, डांस करते है। अगर कठपुतली को लगे कि वहां मैं बहुत अच्छी डांस कर रही हूं तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो वहीं लटक जाएगी। तो इसी तरह बाबा हमारे से सेवा कराता है, परमधाम में बैठ करके नचाता है, लेकिन कभी कभी हमें अभिमान आता है, वाह मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, फिर बाबा कहेगा अच्छा कर लो करके वहीं छोड़ देगा तो सेवा कर सकेंगे? इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है, बस बाबा कराता है, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूं। इससे भी हमें सेवाओं से भी वैराग आएगा। तो निमित्त और उसमें बाबा ने उस मुरली में चार बातों का अभ्यास बताया था, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। जो निमित्त समझेंगे वही निर्माण बन सकेंगे, और जो निर्माण बनते हैं वही निर्माण का कार्य कर सकेंगे, और जो निर्माण का कार्य करते हैं वही निर्वाण स्थिति में रह सकेंगे। कई सोचते हैं कि हम परमधाम में ज्यादा समय टिक नहीं सकते, निर्वाण स्थिति में टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? क्योंकि कोई ना कोई अभिमान है, अभिमान वाला सोमानों में नहीं रह सकता, और अभिमान वाला ज्यादा समय परमधाम की स्थिति में नहीं रह सकता, अभिमान वाला एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता, चित्त स्थिर योगी नहीं बन सकता। इसीलिए हमें निमित्त और निर्माण बनना है। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, जितना बेहद के वैरागी बनेंगे उतना मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खुलेगा। इसीलिए वो 31 तारीख की वाणी का ये सार, और उसके बाद 18 जनवरी की वाणी थी। सेकंड में क्या करो, इस देह भान से मुक्त एवरेडी बनो, मुक्ति और जीवन मास्टर, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता बनो, जिसको बाबा कहते हैं विधेयी अवस्था। विधेयी अवस्था हमारी बनी रहे, क्योंकि बाबा ने उस मुरली में कहा कि जीवन मुक्ति कोई सत्यु में तो होगी, लेकिन पहला जन्म कहां है? संगम युग है पहला जन्म। जिन्होंने इस पहले जन्म का ही आनंद नहीं लिया, अभी तक मुक्त नहीं बने, तो वहां सत्यु का आनंद कैसे ले सकेंगे? सत्युग से भी नंबर वन जन्म हमारा यह है। तो इस जन्म में हमारे ना कोई खिटपिट हो, मुक्त अवस्था, बेफिकर बादशाह वाली अवस्था रहे। इसके लिए कोई सेवा का भी बंधन न हो, कोई संस्कारों का भी बंधन न हो, इसको कहते जीवन मुक्त अवस्था। कहते ना राजा जनक कैसा था? जीवन मुक्त, विधेयी था, नष्ट मोहा था। कहते एक बार राजा जनक नहाने के लिए कहीं तालाब पर गए थे, उसके साथ एक सन्यासी भी था। जो किसी ने, मंत्री ने आकर के उसको समाचार सुनाया, अपना महल जल गया। उस समय वो सन्यासी रोने लगा, तो राजा जनक ने पूछा कि आप क्यों रो रहे? कहा कि मेरा कमंडल उसके अंदर रह गया आपके महल में। वो राजा का तो पूरा महल जल गया, उसको कोई रोना भी नहीं आया, लेकिन उसके कमंडल के लिए वो रो रहे। और जबकि उसने सब कुछ छोड़ा था, संन्यास भी किया था, तो भी उसका लगाव कमंडलू था। तो इसीलिए ऐसे हम नष्ट मोहा रहे, कोई भी चीजों से, कोई वस्तु वैभव से मोह नहीं, और इसके लिए चाहिए विधेयी अवस्था। बाबा ने कहा कि अचानक के खेल में एवरेडी बनने के लिए क्या करो, विधेयी अवस्था बनाओ। ये विधेयी अवस्था एक सेकंड में शरीर से मुक्त होने की अवस्था अचानक के पेपर के समय काम आएगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार मन को कंट्रोल करके, संकल्प को ब्रेक करके, जो संकल्प हाई और वाई में जाते हैं, क्योंकि विधेयी अवस्था भी क्यों नहीं बनती। 31 के वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, इस वर्ष में हाई और वाई को क्या करो, विदाई दो। अगर सारा दिन सोचेंगे हाय ये ऐसा क्यों हो गया, हाय ये ऐसा इसने क्यों बोला, अगर सारा दिन संकल्प विकल्प चलाएंगे, थकी हुई आत्मा परमधाम में उड़ नहीं सकती। सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति या विधेयी अवस्था नहीं बन सकती। इसीलिए संकल्प को क्या करना है, कंट्रोल देना है, ब्रेक लगाना है। जितने पॉजिटिव संकल्प, कम संकल्प, उतनी विधेयी अवस्था रहेगी, उतना देहबान से परे रहेंगे। और यह अवस्था विनाश में आने वाले विकराल समय में बहुत अच्छी काम आएगी, इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो विधेयी रहते हैं वो कभी नहीं कहेंगे हमको योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो विधेयी है जैसे एवरेडी, उनको टाइम मिला तुरंत। एक अनाउंसमेंट है, डायमंड हॉल की जो भी सेवादार है क्लास के बाद यहीं रुकेंगे, उनको कुछ सेवा है। तो बात चल रही थी कि किस तरह से हमें विधेयी बनना है, विधेयी अवस्था में रहना है एक सेकंड में, क्योंकि विनाश का कोई ज्यादा समय नहीं होगा। और विनाश के समय निर्भय बनकर के हम शरीर से अलग हो जाए, इसके लिए विधेयी बनकर के रहना है। रोज मैं आत्मा इस शरीर में आता हूं, मैं विधेयी हूं, इस शरीर का आधार लेता हूं, कर्म करता हूं, फिर वापिस जाता हूं। बांध से क्या करो, न्यारे बनने का अभ्यास करो। तो ये थी, वैसे तो टाइम पूरा हो गया इसीलिए यहां पूरा करेंगे। तो ये है इस सीजन की पूरा मुरलियों का सार, और उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाए। उसके बाद आगे की भी जो मुरली थी, सेवा करते हुए उपराम बनो, संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण करो, मैपन का त्याग करो, तो इसके पर हम चिंतन करें। तो इसको कहा जाता है समय अनुसार पुरुषार्थ। समय अनुसार जो माया आ रही उसके पर जीत पाने के लिए ये पुरुषार्थ। तो ये बाबा हमें कितने अच्छे ब्रह्मास्त्र देते हैं। ये है ब्रह्मास्त्र, जो सीजन की मुरलिया एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। अगर ये आपके साथ में है तो माया हमारे पर हमें क्यों परेशान करेंगी। इसीलिए केवल हमें उसको अपने बुद्धि रूपी तर्कस में रखना पड़ेगा। अगर बुद्धि में मुरली के पॉइंट है ही नहीं, ब्रह्मास्त्र है ही नहीं, और युद्ध के मैदान में जाएंगे तो माया हमें परेशान करेगी। इसीलिए बाबा ने कितने अच्छे अच्छे ब्रह्मास्त्र दिए। तो रोज एक मुरली की स्टडी करें, और उस अनुसार सारा दिन क्या करना है, उसका मनन चिंतन करना है। और जब हम इस मुरली के मनन चिंतन में सोमान में रहते तो फिर वेरत बातों से मुक्त रहेंगे, और फिर सारा दिन फिर कर्मों में भी योग युक्त, और शाम को जब भी बैठ करके योग लगाएंगे वो भी योग युक्त। तो ऐसा हमें क्या करना है, अगले सीजन में जब तक बाबा आए तब तक बाबा ने हमें जो इतना उपकार किया है, बाबा परमधाम से आकर की कितनी पालना कर रहे हैं, तो इस पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, उस मुरलियों का स्वरूप बनना। तब जब अगले समय जब आएंगे बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा आपसे बड़े खुश होंगे और आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा पुरुषार्थ करने का प्लान बना करके हमें यहां से जाना है, और ऐसा चार्ट भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।